प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में हमारे आज के श्रोता हैं श्री संजय साहू जी। आप न्यू आदर्श नगर पोटिया कला दुर्ग से हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है सप्ताह के श्रोता।
धन्यवाद मैडम। और अर्पा रेडियो सुन रहे सभी रेडियो श्रोता मित्रों को संजय साहू का प्यार भरा नमस्कार।
संजय जी, जैसा कि आज आप हमारे सप्ताह के श्रोता में आज आप शामिल हुए हैं, तो हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपके शौक क्या है ये जानेंगे। तो इससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, क्या पढ़ाई किया है आपने?
मैंने पीजी किया है मैडम, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, एम काम हूँ, प्लस मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी मास्टर डिग्री की है, एमसीए किया मैंने।
अच्छा,
हाँ,
तो ये कंप्यूटर का शौक आपको बचपन से था?
नहीं, बचपन से नहीं था मैडम, ये तो पीजी करने के बाद, एम काम करने के बाद मैं इस फील्ड में, असल में मेरा थोड़ा स्टार्टिंग जो था स्ट्रगल काम का थोड़ा सा ज्यादा था। असल में मेरी शुरुआत जो है एक बोलना चाहिए कि मेडिकल स्टोर से सेल्समैन से शुरू हुई थी, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसमें तो आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो मैंने एमसीए किया। एमसीए करने के बाद मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में मैं 10 साल काम किया, जो मेरे को बहुत अच्छा अनुभव रहा मुझे।
जी जी।
उसके बाद मैं अभी एक निजी कंपनी में जो डाटा प्रोवाइडर कंपनी है सर्विस की, उसमें नेटवर्किंग और मार्केटिंग दोनों का काम करता हूँ मैडम।
अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है संजय जी की। आप बाद में आपको लगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आना चाहिए और आपने एमसीए की पढ़ाई भी कर ली और कंप्यूटर के क्षेत्र में आप आगे बढ़ भी रहे हैं। तो संजय जी, हम कुछ बातें आपके परिवार के बारे में भी करना चाहेंगे। कौन कौन है आपके घर में?
मेरे घर में मेरी पत्नी है मैडम, जो रायगढ़ में गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टीचर है, और लड़का जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद एक निजी कंपनी में ऑटोकैड में कार्यरत है फील्ड में।
अच्छा।
और मेरी लड़की है जो टू व्हीलर कंपनी होंडा में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पे कार्यरत है, निजी उसमें। और घर पे मेरी एक बहू है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टाइपिस्ट है।
अरे बात है, सबके सब शिक्षित और सबके सब कार्यरत। सबसे पहले तो हम आपको बधाई इस बात के लिए देते हैं कि आप एक शिक्षित परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और सब के सब अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने बल पर आगे बढ़ रहे हैं, है ना?
ओके ओके, धन्यवाद
जी। संजय जी, आप हमारे बहुत ही सुधी श्रोता हैं, बहुत दिनों से रेडियो में हम आपका नाम भी सुनते आ रहे हैं, हर कार्यक्रम में आपके नाम प्राय सभी फरमाइशी प्रोग्राम में आपके नाम आते रहते हैं। रेडियो का शौक आपको कब से हुआ, कैसे हुआ?
रेडियो तो वैसे मैं शुरू से ही सुनता रहा था मैडम, लेकिन फरमाइशी जब सुनता था तो मुझे लगता था कि पत्र भेजना चाहिए, तो पहले मैं एक बाग बहरा करके महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है, पहले मैं वहां से भेजा करता था लगभग 84 में मैडम।
अच्छा।
उसके बाद मैं 87 में दुर्ग आ गया था, 86-87 में, तो फिर मैं ये पोटिया कला दुर्ग के नाम से भेजना शुरू किया और प्रोग्राम अच्छे लगते थे उस समय, तो गीत संगीत का शौक भी था सुनने का, फिल्में देखने का भी शौक था, तो इसी वजह से रेडियो में जुड़ा हो गया मेरा।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, गीत संगीत सुनने का भी आपको शौक है, तो यहाँ पर हम सुन लेते आपकी पसंद का एक गीत। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
हाँ, तो मुझे एक आनंद फिल्म का गीत सुना दीजिएगा, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने सुने में।
बहुत ही प्यारा गीत है, मुकेश की आवाज में है।
हाँ,
तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म आनंद का ये प्यारा सा गीत।
मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए ओ, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रातें रूठी हुई रातों को मनाया कभी, तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया कभी, रूठी रातें रूठी हुई रातों को मनाया कभी, तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया कभी, तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए उमल, तेरे लिए ही सात रंग पे सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ रंग के तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, उमल तेरे लिए ही सात रंग पे सपने चुने, सपने सपने।
सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता हैं श्री संजय साहू जी, न्यू आदर्श नगर पोटिया कला दुर्ग से। संजय जी, जैसे कि इस गीत के पहले हमारी और आपकी बात हो रही थी कि आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं, बहुत पहले से आप रेडियो से जुड़े हुए हैं और रेडियो के प्रायः हर कार्यक्रम में आपका नाम आता ही आता है, है ना? तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे अर्पा रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बेहद रुचिकर लगते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं?
मुझे अर्पा रेडियो का खासकर शीर्षक गीत बहुत बढ़िया लगता है मैडम। शीर्षक गीत प्लस अनीस जी के जो प्रोग्राम है, अनीस के संग बितान मन के पसंद
जी जी,
इसका हमेशा इंतजार रहता है। प्लस हफ्ते के श्रोता तो मैं सुन ही रहा हूँ मैडम, ये तीनों प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। प्लस मैंने एक चीज और है कि मीडिया वे के अलावा जो कम्युनिटी रेडियो जो चालू हुआ है, उसके आने से शिक्षा सूचना और मनोरंजन के अलावा जो कृषि सामाजिक और स्वास्थ्य जागरूकता की जो बातें होती है, जो प्रसारण होता है, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है अर्पा रेडियो से मैडम।
जी, बहुत ही सही बात आपने कहा कि शिक्षा मनोरंजन के अलावा स्वास्थ्य और जागरूकता के कार्यक्रम भी हम अर्पा रेडियो के माध्यम से बीच बीच में अपने श्रोताओं को बताते रहते हैं और उन्हें जागरूक भी करते रहते हैं। संजय जी, आप घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं, ये हमें पता चला है, तो कहाँ अभी तक आप गए हैं और कौन कौन सी चीजें आपको, कहाँ कहाँ की चीजें और कहाँ कहाँ की जगह आपको बहुत अच्छी लगी है, हमारे श्रोताओं को बताइए, हम जानना चाहते हैं आपके मकसद।
ओके, मैं वैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों में घुमा हूँ और गुजरात के, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया है मैम, वो है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, जहाँ मैं हमेशा जाना पसंद करता हूँ।
अच्छा,
वहाँ पे एक तो वहाँ पे बोलना चाहिए कि नेचुरल दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है, प्लस वहाँ पे देखने लायक जो बीच है, जैसे आर के बीच है, यारदा बीच है, ये बोलना चाहिए कि 12 महीने वहाँ भीड़ रहते हैं, प्लस वहाँ एक जो कुरसुरा सबमरीन है, म्यूजियम है, फिश एक्वेरियम है, ये देखने लायक बहुत अच्छी जगह है, प्लस वहाँ का एक सिंहाचलम मंदिर जो तीन पहाड़ के ऊपर में है, ये मुझे हमेशा प्रभावित करता है। और मैं अभी होली के दूसरे ही दिन निकलने वाला हूँ फिर से विशाखापट्टनम के लिए।
अच्छा, तो आप नहीं बार विशाखापट्टनम?
नहीं, अभी ये श्रोता मित्रों के साथ एक बार जा चुका हूँ मैडम, ये मेरे को फिर से खींच रहा है उधर, अभी फिर से मैं 19 को फिर जा रहा हूँ।
बहुत बहुत हम आपको बधाई देते हैं और आपको आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं।
धन्यवाद।
और आपने जो विशाखापट्टनम की खासियत बताई, वहाँ के बीच के बारे में बताया और वहाँ के जो म्यूजियम के बारे में आपने बताया, तो जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो आपकी बात से वो भी प्रभावित होंगे और उस जगह पर घूम कर आएंगे। तो ये आपके विशाखापट्टनम की बात संजय जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि बात किया जाए तो आप पोटिया कला दुर्ग से हैं, वहां के आसपास कोई ऐसे क्षेत्र जो घूमने लायक हो या जो आपको आकर्षित करते हो?
हमारे गांव से ही रिलेटेड, क्योंकि मैं सिटी के अंदर में रहता हूँ मैडम, ये तो पहले गांव था, अब जो नेगा ड्रिंक में आने की वजह से थोड़ा सा अब अपन गांव के तो नहीं रहे ना शहर के नहीं रहे, ऐसा हो गया अभी। हमारे जो वहाँ देखने लायक तो चंडी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, राजा जगतपाल के जमाने का है वो, प्लस दुर्ग से ही 4 किलोमीटर, ये चंडी मंदिर सिटी में ही मैडम अंदर में, जो बहुत फेमस है यहाँ पे चंडी मंदिर के नाम से। प्लस एक शिवनाथ नदी के किनारे एक छातागढ़ करके एक सिद्धि पीठ है, जहाँ पे मंदिर है और पिकनिक स्पॉट है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे देखने लायक दुर्ग में मैडम। प्लस हमारा तो जो सिटी है दुर्ग भिलाई एक ही है जिसके ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो हमारे यहाँ मैत्री बाग भी है जहाँ छत्तीसगढ़ से सारे लोग आते हैं, जो भारत और सोवियत मैत्री का प्रतीक है। और दूसरी चीज ये है कि नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं हम यहाँ पे मुंबई कोलकाता मार्ग से, इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य का जो स्कोप है बहुत बढ़िया है, और वैसे भी हमारे ट्विन सिटी को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमको यहाँ मतलब बहुत सुविधा है बोलना चाहिए, यहाँ पे
सुविधा है और आपको कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं,
इसी जगह पे रहते हैं,
जागरूकता की बातें हमेशा होती रहती है और यही कारण है कि आपका पूरा परिवार शिक्षित है, पूरा परिवार अपने पैरों पर खड़ा है ना।
ओके
जी, संजय जी यहाँ सुन लेते हैं आपकी पसंद का एक और गीत, कौन सा गीत?
तो एक तो लता जी हमारे पीछे भी नहीं है लेकिन उनकी जो यादें हैं वो जहन में मैडम, तो उनका गाया एक गीत सुना दीजिएगा, मुकद्दर का सिकंदर का दिल तो है दिल,
बहुत ही प्यारा गीत है, तो लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत।
जो
फिर हम स्वागत करते हैं श्री संजय साहू जी का हमारे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में, और इनसे बातचीत कर रही हूँ मैं, यानी आपकी दोस्त सुजाता। संजय जी, पुस्तक पढ़ना भी आपका एक शौक रहा है।
तो
पुस्तकों के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सी पुस्तकें आपको आकर्षित करी हैं? आप कहानी की पुस्तकें पढ़ते हैं या फिर शिक्षा की पढ़ते हैं या फिर किस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं आप?
नहीं, मुझे थोड़ा सा प्रेमचंद जो मुझे बहुत पसंद है, प्रेमचंद की कहानियां और उनका उपन्यास पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस दूसरी जो मेरी लेखिका है शिवानी, उनके उपन्यास बहुत पसंद आते हैं ना, खासकर पत्रिकाएं। तो मैं पत्रिकाएं के लिए मैं सेंट्रल लाइब्रेरी का यहाँ पे मेंबर भी हूँ, इसलिए मैं सुबह बिल्कुल पत्रिकाएं पढ़ने भी जाता हूँ प्रतिदिन।
ये बहुत ही अच्छा शौक है, और पुस्तक हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं संजय जी। और यदि कोई मित्र आपके पास ना हो और पुस्तक यदि आपके पास हो, तो आपका दिन कैसे गुजर जाता है, आपका समय कैसे निकल जाता है, ये पता ही नहीं चलता। और जो दो लेखक लेखिकाओं की बात आपने की, प्रेमचंद और शिवानी की, तो ये अपने शीर्ष स्थान पर रहे हैं, और इनकी पुस्तकें लोगों को आज भी बहुत प्रभावित करती है। तो शिवानी की कौन सी पुस्तक आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करी है? कृष्ण कविता या 14 फेरे या फिर और कौन कौन सी पुस्तकें आपने पढ़ी है?
नहीं, इनकी कहानियां और कुछ उपन्यास हैं जो मेरे पास सुरक्षित हैं, अभी रखे हुए हैं। मैंने ऐसा भी नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पुस्तकें खरीद के पढ़ता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि कहीं किताब मेला लगे तो वहाँ से कुछ पुस्तकें चयन कर लूँ।
मतलब आप संग्रह रखते हैं?
हाँ, मेरे पास संग्रह है। मैं बहुत शुरू से पढ़ता आया हूँ, हालांकि स्मार्टफोन के आने से लोग ऑनलाइन रीड करते हैं, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आता है, वो फीलिंग्स नहीं आ पाती है वैसे पढ़ने में मैडम।
और प्रेमचंद की किताबों के बारे में यदि बात करें तो कोई कहानी ऐसी जो आपको बेहद प्रभावित करी हो?
कहानी में तो मैं अभी भीष्म कहानी का, सहनी जी का मैं तमस पढ़ रहा था, प्लस मुझे गोदान बहुत पसंद है। और कहानियों का तो संग्रह ही है मेरे पास, एक पुस्तक है जिसमें एक कहानी संग्रह ही है प्रेमचंद का, उनका नाम ही वही है, प्रेमचंद की कहानियां।
अच्छा, आपने संग्रह लिया है और उसमें अलग अलग कहानियों को आप पढ़ते हैं। हम आपको आपकी इस संग्रह के लिए बधाई देते हैं, और कभी यदि हमारे श्रोता आपके पास जाए तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें भी ये संग्रह दिखाएं और उन्हें भी बताएं कि किस तरह से हम किताबें रख सकते हैं और अपना अच्छा मित्र उन किताबों को बना सकते हैं। यहाँ पर एक और गीत सुनते हैं संजय जी, वो आपकी पसंद का कौन सा सुनना चाहेंगे?
तो एक काला पत्थर का गीत है किशोर की आवाज में, एक रास्ता है जिंदगी
जो थम गया,
जो थम गए तो कर नहीं। हाँ, ये मोटिवेट करने वाले गाने मुझे अच्छे लगते हैं थोड़ा सा।
जी बिल्कुल, हम आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं फिल्म काला पत्थर का।
एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। कदमों से आते हुए कदमों से
हरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे, जो जम गए तो कुछ नहीं।
कार्यक्रम में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हमारी श्रोता संजय साहू जी का। आप आदर्श नगर पूटिया कला दुर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। संजय जी, आपकी श्रीमती जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, श्रीमती सुजाता साहू जी, मेरे नाम के जैसा ही उनका नाम है जी। कौन सी बातें आपकी पत्नी की आपको प्रभावित करती हैं और किस तरह से सामंजस्य आप लोग आपस में बिठा पाते हैं, क्योंकि दोनों आप कार्य करते हैं, बाहर जाते हैं और साथ साथ घर परिवार को भी एकजुट करके रखते हैं, तो किस तरह से आपस में सामंजस्य बिठा पाते हैं?
एक्चुअली मैडम लगभग 89 के या 90 के आसपास वो भी रायगढ़ में युवाणी प्रभाग में थी, कंपेयर थी वो भी।
अच्छा,
नैमित्तिक कंपेयर थी
जी जी।
उसके बाद से टीचरशिप में लगने के बाद उनको छोड़ना पड़ गया, हालांकि वो रायगढ़ में है, वहाँ से अभी वही कार्यरत है।
अच्छा,
उसे बीच बीच में यहाँ आना होता है, मैं चला जाता हूँ
और
इसकी हाँ स्थानांतरण की प्रक्रिया चली रही है, अभी नया शुरू हुआ है अभी
जी जी,
तो थोड़ा सा तालमेल बिठाना पड़ता है यहाँ पे अपने को।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यदि अलग अलग पति पत्नी रहे तो आपस में सामंजस्य बिठाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन उसका भी मजा है कि आप एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद मिलते हैं तो ढेरों बातें होती होंगी जो आप लोगों के बीच में नहीं हो पाती होंगी उस दौरान जब आप लोग नौकरी में रहते होंगे। तो हम कामना करते हैं कि आपकी पत्नी का शीघ्र तबादला आपके क्षेत्र में हो और आप लोग साथ सुखी रहे, है ना। बच्चों के बारे में यदि बात करें संजय जी, तो बच्चे किस तरह के शौक रखते हैं, जैसे शौक आपके हैं क्या बच्चे भी उस तरह के शौक रखते हैं, क्या वे भी रेडियो सुनते हैं?
नहीं, रेडियो तो नहीं सुन पाते, मूवी देखते हैं, प्लस उनका काम थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा कंप्यूटर फील्ड से लड़का भी जुड़ा हुआ है, ऑटोकैड में है
जी,
इसलिए उनको भी वक्त शायद नहीं मिल पाता है बहुत कुछ, तो मूवी देखने का मेन शौक है उनको और ज्यादा कुछ तो इस फील्ड में नहीं आ पाए हैं मेरे
जी।
मेरे जैसे शौक तो नहीं रख पाए, थोड़ा क्रिएटिव नहीं है, बस जॉब के लिए थोड़ा सा सिंसियर है अपने जॉब के लिए
जी जी। तो वो नौकरी चाकरी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रेडियो में नहीं सुन पाते हैं?
हाँ, बहुत कम सुन पाते हैं
जी जी। संजय जी, आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, घर भी आपका बहुत समर्थ है, तो ऐसा कोई सपना या ऐसी कोई आपकी लालसा होगी जीवन में जो आप करना चाहते होंगे आगे, तो वो हमारे साथ साझा कीजिए।
हाँ बस मैम, एक मुझे जो थोड़ा सा जो हॉबी है वो मुझे रेडियो सुनने का था ही, प्लस मैं चाहता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा सा वीआर लेने का सोच रहा हूँ कंपनी की तरफ से। उसके बाद मैं एक हाँ एक पुस्तक का संग्रहालय मैं अपने घर में रखना चाहता हूँ, पुस्तकों का खासकर, ये मेरा सपना है।
बहुत ही अच्छा सपना है संजय जी, वो बहुत ही जल्द पूरा होगा यदि आप उसे अभी इसी तरह से आप लालसा बनाए रखेंगे।
ओके मैडम, धन्यवाद
जी। और आप कुछ कह रहे थे पुस्तकों के बारे में?
नहीं बस वही, एक मैं धीरे धीरे जहाँ भी जाता हूँ थोड़ा कलेक्ट करते रहता हूँ, ताकि मैं फुर्सत में एक आध साल बाद मैं पढ़ सकूँ, थोड़ा समय उसमें निकाल सकूँ रेडियो, और उसमें बस ये दो ही मेरा वो सपना है कि रेडियो सुनता ही रहूँ, सुनता ही रहूँ।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही संजय जी। और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि उस क्षेत्र में आ गए? कौन सी ऐसी कमी कुछ ऐसी लगती होगी, कुछ खलती होगी कि हाँ ये चीज हमारे देश में नहीं हो पा रही है, ये होना चाहिए?
एक्चुअल में क्या है कि जो टेक्निकल एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है, ये सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है। बुनियादी शिक्षाओं का अभाव हो गया है अभी। अभी सिर्फ बोलना चाहिए कि सिर्फ सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल जो नॉलेज है ये थोड़ा सा तकलीफदायक है। सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि जैसे हम 10th या 12th के बाद कोई एक फील्ड जैसे ITI है या इस तरह के तकनीकी जो होते हैं उसको स्कूल के जो पाठ्यक्रमों में भी शामिल करना चाहिए, कि कोई एक फील्ड को, चाहे वो ऑफिस मैनेजमेंट हो या तकनीकी व्यवसाय से संबंधित कोई एक फील्ड। जो मैंने देखा है कि कर्नाटक और साउथ में है ये, वहाँ पे एक विषय चयन किया जाता है और अगर नौकरी ना भी मिले तो कम से कम उसके बेस पे उनका जीवन चल जाता है,
वो अपने पैरों पर कम से कम उस माध्यम
अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। ये थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, खासकर हमारे राज्य में थोड़ा सा कमी है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अगर ये कमी पूर्ति हो जाए इसकी तो अगर नौकरी ना भी मिले तो वो आगे बढ़ सकते हैं,
आगे बढ़ सकते हैं,
स्वयं का अपना व्यवसाय कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही सही बात, बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही सटीक बात आपने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को बताई संजय जी। और यहाँ सुन लेते हैं हमारे कार्यक्रम का अंतिम गीत, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
मुझे कटी पंथक का एक गीत सुना दीजिएगा, ये सा मस्तानी, थोड़ा सा मोडी सॉन्ग है
जी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है कटी पंथक का।
ओके ओके,
हम आपको सुनवाते हैं।
मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। तो देती है क्यों कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर दिए जा
साहू जी आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें इतनी अच्छी और सटीक और प्यारी सी जानकारी आपने हमें दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद मैडम।
सप्ताह के श्रोता इस कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता थे श्री संजय साहू जी पोटिया कला दुर्ग से और अब मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए आप सभी को सुजाता शुक्ला का नमस्कार।
सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।